नमस्कार। कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में होंगे मुख्य समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट अभिषेक मुखोपाध्याय।
हेलो आकर्षिता, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को होस्ट आकर्षिता। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज और डिस्कशन सेगमेंट डेट लाइन इंडिया reports, business capsule tributes and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first. Vice President Jagdeep Dhankar says a resurgent Africa and rising India can give impetus to South-South cooperation, stresses on India-Africa cooperation in various fields in his address at the India-Africa Business Conclave in New Delhi.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना। श्री मोदी आज शाम पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में एक सामुदायिक कार्यक्रम में भाग लेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से संवाद करेंगे।
टुडे इंडिया ईयू रीजनल कॉन्फ्रेंस बिगिंस इन न्यू दिल्ली टू डिस्कस इमर्जिंग थ्रेट्स ड्यू टू ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन।
पाकिस्तान से इराक जा रहे शिया तीर्थयात्रियों की बस मध्य ईरान में दुर्घटनाग्रस्त होने से 28 लोगों की मौत।
एंड टोरेंशियल रेन्स कॉज एक्सटेंसिव फ्लडिंग इन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द मालदीव्स। And now, Akarshita, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national and the global level. And today we will be talking about the National Space Day, an International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism. Well, to start off with the first topic of the day, that is the National Space Day, India is set to celebrate its first National Space Day on August 23rd, 2024. In 2003, on this very day, Chandrayaan-3 accomplished the safe and soft landing of Vikram lander on the lunar surface. India became the fourth country to land on the moon and the first to land near the southern polar region of the moon. The Union government has declared August 23rd as the National Space Day to celebrate the remarkable success of Chandrayaan-3 mission, which accomplished a safe and soft landing of the Vikram lander and deployed the Pragyan rover on the lunar surface near the South Pole.
देश में 23 अगस्त के दिन चांद पर फतह किया था। इस गौरवमय क्षण के बाद पूरा भारत अपने इस उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहा था। जी हां, भारत 23 अगस्त के दिन चांद पर उतरने वाला चौथा देश और इसके दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरने वाला पहला देश बन गया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि की याद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इस वर्ष देश अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएगा और इसका विषय होगा चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युवा पीढ़ी को शामिल करने और प्रेरित करने के लक्ष्य के साथ इस उपलब्धि का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है। अंतरिक्ष में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियों, समाज को होने वाले गहन लाभों और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़ने के असीमित अवसरों पर प्रकाश डालने वाले अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए भारत सरकार का मत्स्य पालन विभाग DOF मत्स्य पालन क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोगों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सेमिनार और प्रदर्शनों का एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम विभिन्न तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, इसरो के क्षेत्र और कार्यालयों के सहयोग से आयोजित किए जा रहे हैं।
23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में अवतरित हुआ। भारत सरकार ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया है। अंतरिक्ष विभाग अन्य मंत्रालयों विभागों के साथ मिलकर पूरे देश में यह समारोह धूमधाम से मना रहा है। आइए हम सब साथ मिलकर 23 अगस्त 2024 को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएं। इस वर्ष के लिए चुना गया विषय है जीवन का उत्कर्ष भी और चंद्र का स्पर्श भी, भारत की अंतरिक्ष गाथा।
इस वर्ष की उत्सव की थीम समाज और प्रौद्योगिकी पर अंतरिक्ष अन्वेषण की गहरे प्रभाव पर प्रकाश डालती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य समारोह का उद्घाटन करेंगी, जो नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का जश्न मनाने के लिए भारत सरकार के अंतरिक्ष मिशनों की उल्लेखनीय उपलब्धियों को उजागर करने और देश के युवाओं को प्रेरित करने के लिए एक महीने का अभियान शुरू कर रही है।
Yes, and Akarshita, several events are organized on this occasion. Space on Wheels showcasing ISRO's vision for scientific advancement, Bharatiya Antariksh Hackathon, organized by ISRO, the national level hackathon, will present students with various problem statements, encouraging them to develop creative solutions. ISRO Robotics Challenge led participants to showcase their hardware and rover functionality through video submissions and design reports. With the tagline, "Let's build a space robot," this challenge offers students a chance to engage in space robotics. And addressing a curtain raiser press conference in New Delhi, Minister of State for Space, Dr. Jitendra Singh said, "On this day last year, Chandrayaan 3 mission accomplished the safe and soft landing of Vikram lander on the lunar surface." He said, "With this, India became the fourth country to land on the moon and the first to land near the southern polar region of the moon." And Dr. Singh said the space economy will grow 5 times in the next 10 years to around $44 billion.
This significantly happens to be the first National Space Day being observed by us. And therefore, we wish to do it in a manner that is befitting of the occasion. And I would rather say that it's not only a day of celebration, it's also a day of reflection and retrospection, and also of a roadmap charting for the future. So we have also tried to formulate the program accordingly, given it an academic outlook with a futuristic vision, because the successful landing of Chandrayaan is not only the interest in space which has generated all across the country. Suddenly there is a huge amount of interest in science, technology, innovation, startup across the sectors.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी और लैंडिंग साइट को शिव शक्ति बिंदु नाम दिया गया था। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण उपलब्धियों को मान्यता देता है और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रगति पर प्रकाश डालता है। ये दिन छात्रों के बीच अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में रुचि पैदा करके और उन्हें रोल मॉडल प्रदान करके भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए भी समर्पित है। और अभिषेक, जैसा हम जानते हैं कि जब से जो है मून की लैंडिंग हुई है, तब से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनमें कितनी एक्साइटमेंट है, स्पेशली उनके लिए जिनका इंटरेस्ट था पहले से ही स्पेस मतलब प्रोग्राम्स में या फिर जो भी हम स्पेस प्रोग्राम्स बनाते हैं। और पहली बार ऐसा हुआ कि भारत ने जो है हमने खुद अपने देश में जो उसके पार्ट्स हैं वो हमने खुद बनाए।
Absolutely, and it is indeed a very phenomenal achievement for the ISRO and as well as for the nation. And moving on to our next topic of the day, that is the International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism. The International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism was established by the United Nations General Assembly in 2017, and this day is observed to honor and support the victims and survivors of terrorism. The day serves as a chance to commemorate all victims of terrorism worldwide and renew global efforts to protect them.
संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष 21 अगस्त को आतंकवाद पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म मनाता है। ये दिन दुनिया भर में आतंकवाद की वजह से घायल, मौत का शिकार हुए लोगों, पीड़ितों और प्रभावितों को सम्मान, समर्थन व सहायता देने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष तीसरा दिवस मनाया जा रहा है, जो कई स्मारकों और महामारी से निपटने की प्रक्रिया पर केंद्रित होगा, क्योंकि आतंकवाद के पीड़ितों को याद करने और उन्हें सम्मान देने के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है। इस वर्ष आतंकवाद के पीड़ितों के स्मरण और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति के लिए आवाजें और शांति समर्थकों और शिक्षकों के रूप में आतंकवाद के पीड़ित नामक एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
Yes, and terrorism leaves behind a trail of destruction that goes far beyond the immediate loss of life. The survivors, often overlooked in the broader narrative, carry the scars, both physical and psychological, of these heinous acts. Families and communities too are left to pick up the pieces. The loss of a loved one is a pain that is both deep and enduring.
आज का दिन उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने किसी भी प्रकार से आतंकवाद को छेला है। आज वो दिन है जब उनकी कहानियां सुनी जाए और उनकी जरूरतों पर ध्यान दिया जाए।
Yes, and as we reflect on the impact of terrorism, it is crucial to consider the tangible ways in which we can support victims and survivors. The journey to healing and rebuilding lives is long and challenging, and while no measure can fully undo the harm caused, there are several steps that can be taken to provide meaningful assistance.
जी हाँ, और आतंकवाद द्वारा छोड़े गए मनोवैज्ञानिक प्रभाव जो है गहरे होते हैं। ऐसी किसी भी घटना से जो भी व्यक्ति प्रभावित होता है अभिषेक, उसको एक तरीके से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का सामना करना पड़ता है, जिसे उसे चिंता, अवसाद व अन्य मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए जरूरी है कि ऐसे व्यक्ति जिनका आतंकवाद से सामना हुआ हो वो परामर्श और चिकित्सा और डॉक्टरों की सलाह लें और उनका अच्छे से ध्यान रखा जाए, क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंसेस के बाद जो इंसान है उसके अंदर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और वो अंदर से टूट जाता है।
एब्सोल्युटली, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन ऑल्सो provide them with financial assistance and compensation, then legal aid and community integration and social support, and also help them in employment, and awareness and advocacy campaigns can be started by us. So let's spare a moment for and think about all those who are deeply affected by terrorism.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
मर्मर्स ऑफ द जंगल और आदिगुंजन, अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म इन मराठी, बैग्ड टू एक्लेड्स इन द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स डिक्लेयर्ड ऑन ऑगस्ट 16th, एंड इट बैग्ड द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड एंड द बेस्ट नरेशन अवार्ड। एंड ऑन दिस ओकेजन द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्री सोहिल वैद्या शेयर्ड हिज जर्नी एंड इंस्पिरेशन।
I am extremely delighted, thrilled. We made this documentary with a very low shoestring budget, and so this came as a big surprise to us, and this was very encouraging. The core theme of Murmurs of the Jungle is the relationship of humans and nature. I met a Adivasi community, and I was fascinated with their views about jungle. I was fascinated with their views about God, their mythologies, and I thought that this is a very universal subject. And that was the inception of the idea.
अभिषेक, ऐसे समय में जब हम क्लाइमेट क्राइसिस का सामना कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि पृथ्वी का तापमान कितना बढ़ रहा है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, तो पंजाब की ये स्टोरी मैं अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि पंजाब में वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण विभाग हरियाली मिशन के तहत समूचे राज्य में पौधारोपण किया जा रहा है, और पठानकोट जिले के शाहपुर कंडी के 30 हेक्टेयर वन्य क्षेत्र में इसके तहत ड्रोन के माध्यम से कई किस्मों के बीजों का छिड़काव किया गया है। ये बीज वन में करीब 20 दिन के भीतर स्वतः ही अंकुरित होने लगेंगे, जिससे वन्य क्षेत्र का विस्तार होगा। एक रिपोर्ट।
हरियाली मिशन के तहत राज्य में विभिन्न किस्म के 3 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य है। पठानकोट जिले के वनों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन के माध्यम से तुलसी, आंवला, जामुन, हरर, भेड़ा, सुजान और विभिन्न प्रकार के बीजों को रेत के छोटे छोटे गोले बनाकर ड्रोन के माध्यम से वन्य क्षेत्र में छिड़का गया। धार ब्लॉक में करीब 24,000 हेक्टेयर वन्य क्षेत्र है, और घने वन के कारण मजदूरों व अन्य साधनों की सहायता से पौधे नहीं लगाए जा सकते हैं। ऐसे में ड्रोन के माध्यम से अब करीब 5 लाख बीज क्षेत्र के वन में छिड़के जाएंगे। शिशु शर्मा, शांतल, आकाशवाणी समाचार, जालंधर।
As part of the exercise to modernize and transform the higher education sector, the Kerala government will launch an education hub in Pinarayi in Kannur district this Friday. The hub spanning over 12 acres of land will be launched by Chief Minister Pinarayi Vijayan. We have more from our Kochi correspondent.
The state government of late has adopted a flexible approach aiming to provide a holistic education experience for students It has introduced four-year undergraduate courses, allowing students to choose courses aligned with their interests and offering work and skill enhancement opportunities. There is growing interest from international students, with thousands applying for higher education in various universities across the state. Many feel this indicates the state's rising profile as a preferred educational destination. The government has also set a target of creating 1 lakh jobs through its startup policy designed to foster innovative enterprises. The educational hub at Pinrai, a 285 crore rupee initiative, is aimed to enhance the region's educational infrastructure and will feature institutions like Polytechnic College, IHRD College of Applied Sciences, ITI, Hospital Management Institute and Civil Service Academy. Basic amenities like a guest house, canteen, auditorium, playground and hostel will be developed as part of the project. The project will ensure that multiple institutes offering innovative courses are available on a single campus. Rajmohan, Kochi.
The government of Andhra Pradesh is all set to develop its capital city, Amravati, as a tourism hub. Master plans underway. We have more on this story from a correspondent.
The government of Andhra Pradesh has formulated plans to develop capital Amravati as a mega tourism hub by spending over 500 crores. Chief Minister Chandrababu Naidu recently directed the officials of Tourism Department to prepare a comprehensive project report for the central government grant under the Mega Tourism Development Project. The state government is contemplating to develop this plan on the lines of Prasad and Swadesh Darshan schemes. Following the review conducted by the Chief Minister on the Tourism Department on 13th of this month, the authorities are making arrangements for the selection of the consultancy firm. The Krishna River Basin will be developed as a platform for entertainment, science, adventure, culture and spiritual activities. A ropeway will be constructed from Kanakadurgamma Temple to Bhavani Island. Boats are proposed to be floated in Krishna River at night for tourists. The idea is to arrange accommodation, meals and cultural programs on the boat itself. Development works of floating restaurants will be started. Master plan roads will be developed from capital city to the famous Kondapalli Fort, Anantapadmanabha Swami Caves in Undavalli, Mangaligiri Panakala Swami Temple, Amaravati Temple, etc. Arrangements are made for tourists to visit the area to make Kondapalli more popular for toy making. Tourism Minister Kandal Durge said that the Chief Minister has directed to create programs so that those coming to the capital city from state and other areas can stay here for 1 or 2 days and visit famous temples and famous places. He said that the selection of the consultancy will be completed and the comprehensive project report will be prepared as soon as possible. Sai Sishla for Parikrama, Akashwani News, Vijayawada.
Now we will take on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
Today is the day when a great son of India was martyred in the fight for freedom way back in the year 1771. He was Ondi Veeran Pagadai, the one-man army from Tamil Nadu. Ondi Veeran was one of the first warriors to rebel against the East India Company. He was born in Sankaran Kovil of Tengasi district of Tamil Nadu. He was the commander-in-chief of Bhuli Devan's army, who ruled Tirunelveli area. East India Company acquired the revenue-collecting rights of southern Tamil Nadu from the Nawab of Arcad. Bhuli Devan and his lieutenant Ondi Veeran refused to accept the British domination. Ondi Veeran led the army and fought many battles with the British and won them all.
During one of the wars, the East India Company arrested Bhuli Devan from his fort and beheaded him. Ondi Veeran was enthroned as the king. He continued to fight the British and also took care of Bhuli Devan's family. In all, Ondi Veeran fought 11 battles against the East India Company. Finally, on the 20th August 1771, near Manur village of Tirunelveli district, even after being fatally wounded, Ondi Veeran led his army to victory against the British. But after the war, the fearless warriors succumbed to injuries. Today, a memorial has been built at Manur, beckoning the coming generations to pause and ponder on the life of the great warrior.
It was on this day in 1828 that the first session of Rajaram Mohan Roy's Brahmo Samaj was held in Kolkata. Rajaram Mohan Roy was a pioneer social reformer in India who paved the way for progress in India under British rule. Roy was also an important figure in the Bengal Renaissance movement, often being called the father of the Bengal Renaissance. The Brahmo Samaj is credited with being one of the most important reform movements in India, which led to the foundation of modern India. Brahmo Samaj was a reflection of the Bengal Renaissance. The organization took active participation in social emancipation, which included the abolition of sati, the caste system, child marriage, dowry, and in upliftment of the status of women in society.
Ever since the beginning of a political movement against the British government, leaders had been demanding constitutional reforms. Dadabhai Nauroji had already put forward the idea of Swaraj in the annual session of Congress held at Calcutta in 1906. Also, during the First World War, the Home Rule League movement was gaining momentum throughout the country. To satisfy popular demand, Edwin Montagu, then Secretary of State for India, made a declaration in the British Parliament on this day in 1917, defining the goal of British policies in India. This came to be known as the August Declaration. The August Declaration aimed at increasing association of Indians in administration with a view to the progressive realization of responsible governments in India. The declaration proposed to provide a dominion status to India after the Second World War. However, the leaders in India criticized the reforms as people demanded complete independence and not just a dominion status. The declaration was criticized in a session held at Calcutta in December 1917. Bal Gangadhar Tilak also characterized the reforms as unworthy and disappointing, a sunless dawn. This report, however, became the basis of the Government of India Act 1919, which remained the cornerstone of governance till India's independence in 1947.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल. अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स में भाग लेने के लिए भारतीय टीम आज सुबह पेरू की राजधानी लीमा के लिए रवाना हुई. वहीं भारतीय खेल प्राधिकरण परिसर बेंगलुरु में अन्य स्पर्धाओं के लिए शिविर लगाए गए हैं.
यस एंड इन बिजनेस न्यूज टुडे डोमेस्टिक स्टॉक इंडेक्स सेंसेक्स एंड द निफ्टी रजिस्टर्ड अ मार्जिनल गेन्स. At the closing bell, the BSE Sensex closed 102 points, or 0.13%, higher at 80,905. The NSE Nifty up by 71 points, or 0.29%, to close at 24,770.
और अब बात उन व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस. आज भारतीय शास्त्रीय संगीत और संस्कृति की फिजा में शहनाई के मधुर स्वर घोलने वाले प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की पुण्यतिथि है. वर्ष 1947 में देश की आजादी की पूर्व संध्या पर जब लाल किले पर भारत का तिरंगा फहरा रहा था, तब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई भी वहां आजादी का संदेश बांट रही थी. तब से लगभग हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के भाषण के बाद बिस्मिल्लाह खां का शहनाई वादन एक प्रथा बन गया था. भारत रत्न से सम्मानित प्रख्यात शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां को सन 1969 में एशियाई संगीत सम्मेलन के रोस्टम पुरस्कार तथा अनेक अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया. आइए सुनते हैं उनका ये शहनाई वादन.
And Mulvant Rai Himmatlal Vinu Mankad passed away on this day in 1978. He was a former captain of Indian cricket team and appeared in 44 test matches for India between 1946 and 1959. He was best known for his world record setting opening partnership of 413 runs with Pankaj Roy in 1956, a record that stood for 52 years, and for running out of batsmen backing up at the non-striker's end. Mankading in cricket is named after him. And in June 2021, he was inducted into the ICC Cricket Hall of Fame.
आज हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के धनी विष्णु दिगंबर पलुस्कर की पुण्यतिथि है। उनका भारतीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान रहा। विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में महात्मा गांधी की सभाओं सहित विभिन्न मंचों पर रामधुन गाकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाया। पलुस्कर ने लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना कर भारतीय संगीत को एक विशिष्ट स्थान दिया। इसके अलावा उन्होंने अपने समय की तमाम धुनों की स्वरलिपियों को संग्रहित कर आधुनिक पीढ़ी के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्यों में पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, पंडित विनायक राव पटवर्धन, पंडित नारायण राव और उनके पुत्र डीवी पलुस्कर जैसे दिग्गज गायक शामिल हैं। आइए सुनते हैं उनका ये रामधुन।
तुमके चलत राम संग, तुमके चलत राम संग, बाजत पैंदन ला, तुमके चलत राम संग, तुमके चलत।
Mary Margaret Molly Kay was born on this day in 1908. She was a British writer. Her most famous book is The Far Pavilions in 1978. M.M. Kay was born in Shimla, British India, and lived in an Auckland Shimla, a huge heritage property, from 1915 to 1918. Published in 1978, The Far Pavilions became a worldwide bestseller on publication and caused the successful republication of Shadow of the Moon, with the previously deleted sections restored, Tradewind and Kay's crime novels. In March 2003, Kay was awarded the Colonel James Todd International Award by the Maharana Mewar Foundation of Udaipur, Rajasthan, for a contribution of permanent value reflecting the spirit and values of Mewar.
आज खगोल भौतिक शास्त्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की पुण्यतिथि है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने व्हाइट ड्वार्फ यानी श्वेत बौनी नामक के नक्षत्रों के बारे में सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन नक्षत्रों के लिए उन्होंने जो सीमा निर्धारित की है उसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। उनके सिद्धांत से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अनेक रहस्यों का पता चला। उन्हें सरकार द्वारा पद्म विभूषण और वर्ष 1983 में भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
Usain Bolt was born on this day in 1986. He's a Jamaican retired sprinter, widely considered to be the greatest sprinter of all time. He's an 8-time Olympic gold medalist and the world record holder in the 100 meters, 200 meters and 4x100 meters relay. And also Kenny Rogers was born on this day in 1938. He was an American singer and songwriter. He was inducted into the Country Music Hall of Fame in 2013. Rogers was particularly popular with country audiences, but also charted more than 120 hit singles across various genres, topping the country in the pop album charts for more than 200 individual weeks in the United States alone. Let's listen in to his hit track, Something Inside So Strong.
The higher you build your barriers, the taller I become, the farther you take my rights away, the faster I will run. You can deny me, you can decide to turn.
आज भारत के प्रसिद्ध चित्रकार कृष्ण कन्हाई की जयंती है। वे चित्रांकन, यथार्थवादी समकालीन चित्रों और भगवान राधा कृष्ण के विषय पर चित्रों के विशेषज्ञ हैं। कृष्ण कन्हाई कला और सोने की पत्तियों और रत्नों का उपयोग करके पेंटिंग की पारंपरिक पद्धति में निपुण हैं। वर्ष 2004 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
John Graham Miller was born on this day in 1952, known professionally as Joe Strummer. He was a British musician. He was a co-founder, lyricist, rhythm guitarist and lead vocalist of the punk rock band The Clash, formed in 1976. The Clash's explosive political lyrics, musical experimentation and rebellious attitude greatly influenced rock music in general, especially alternative rock. The music incorporated reggae, ska, dub, funk, rap and rockabilly. Let's listen in to his hit song, The Irish Rover.
On the 4th of July, 1806, we could stay from the street forward farm. We were sailing away with a cargo of flicks for the Grand City Hall in New York. It was a wonderful time.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता सिंह और अभिषेक को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन के लिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर।
नमस्कार।